संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 20 मार्च 2020 के इस बुलेटिन में शामिल हैं। कोविड-19 दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भीषण वैश्विक चुनौती। महासचिव ने एकजुटता और एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत पर दिया जोर। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में रोजगारों पर पड़ेगा भारी असर। कोविड-19 प्रकोप के दौरान प्रवासियों, बेघरों और विकलांगों का खास ख्याल रखने की जरूरत और बच्चों की दुनिया को भी आसान बनाने व सही सूचना के प्रवाह पर जोर। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। इस ऐप में बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके जरिए ताज़ा समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से लोगों में डर और अनिश्चितता गहरा रहे हैं, इसलिए इस संकट पर पार पाने के लिए आपसी एकजुटता, आशा और राजनीतिक इच्छा शक्ति की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। महासचिव गुटेरेश ने गुरुवार को एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता में ये बातें कहीं। उधर संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यों के समन्वय कार्यालय ओचा ने युद्ध व आपात स्थिति वाले क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 10 करोड़ लोगों के बारे में चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि चूंकि ये आबादी संयुक्त राष्ट्र की सहायता पर ही निर्भर है, इसलिए इस आबादी पर बहुत भीषण असर पड़ने की आशंका है। कोविड-19 से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों का ब्यौरा सुनिए सचिन गौड़ से।
कोविड-19 के दुनिया भर में अब तक 2,10,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा,
We are facing a global health crisis unlike any in the 75-year history of the United Nations. People are suffering, sick and scared. A global recession, perhaps of record dimensions, is a near certainty.
UN महासचिव कह रहे थे कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस से जिस तरह मानवीय पीड़ा फैली है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और लोगों के जीवन में उथल पुथल हुई है। इस तरह का वैश्विक स्वास्थ्य संकट UN की 75 वर्ष के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। व्यापक पैमाने पर आर्थिक मंदी करीब करीब निश्चित है। ये एक ऐसा लम्हा है जो विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं से समन्वित, निर्णायक और अभिनव नीतियों की मांग करता है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नई रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें इस साल के अंत तक विश्व भर में लोगों की आय नुकसान को $3.4 trillion आंका गया है। UN प्रमुख ने कहा कि वो जल्द ही G20 नेताओं के साथ बैठक में इस बड़ी चुनौती से निपटने के रास्तों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी रूप से हमें लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है, सबसे निर्बल, कम वेतन पाने वाले कर्मचारी, छोटे और लघु उपक्रम, लोगों के लिए वेतन में मदद, बीमा, सामाजिक संरक्षण, दिवालिया होने की रोकथाम और रोजगार सुरक्षा अहम है। उधर संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत संगठनों ने कहा है कि युद्ध क्षेत्रों और आपात स्थिति में रहने को मजबूर 10 करोड़ लोगों तक सहायता पहुंचाना जारी रखना होगा। अगर ऐसे इलाके वायरस की चपेट में आते हैं तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। संवेदनशील इलाकों में रह रहे लोगों को इस बीमारी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। UN एजेंसी का कहना है कि इस कठिन समय में भी मानवीय राहत को जारी रखना वैश्विक एकजुटता की कार्रवाई है और सभी के हित में है। व्यापक स्तर पर तालाबंदी होने से करोड़ों बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही उन्हें स्कूलों में भोजन मिल पा रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम किया जा रहा है ताकि बच्चों के भोजन व पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को बताया कि चीन के वुहान शहर में कल कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जो ये आशा बंधाता है कि इस वायरस पर काबू पाना संभव है। लेकिन ढील बरतना गलत होगा और ये मानना भी कि इस बीमारी से सिर्फ उम्रदराज लोग ही प्रभावित होते हैं। ये बात युवाओं को हमेशा ध्यान में रखनी होगी ताकि वो न सिर्फ अपना बचाव करें बल्कि वृद्धजनों की सुरक्षा भी संभव हो सके। कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र भारत, अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी सहित अन्य कई देशों में अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। एहतियाती कदमों के कारण व्यापक पैमाने पर तालाबंदी हुई है, शहरों में जीवन की रफ्तार ठहर गई है। भारत में अब तक 195 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। भारत सरकार ने रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने और स्वैच्छिक रूप से घर से बाहर न निकलने का आह्वान किया है। साथ ही 22 मार्च से एक सप्ताह के लिए भारत आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने कोविड 19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराते संकट के बादलों के बीच रोजगार बचाए रखने के लिए अनेक उपाय सुझाए हैं। यूएन एजेंसी ने कहा है कि अगर सरकारों ने जल्द कदम उठाए तो कार्यस्थलों पर कर्मचारियों का ख्याल रखना, अर्थव्यवस्था को स्फूर्ति प्रदान करना और लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार बचाना संभव हो सकेगा। ILO के महानिदेशक गाय राइडन ने कहा है कि अब ये महज एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं है, ये एक बड़ा श्रम बाजार और आर्थिक संकट है जिसका लोगों पर भारी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में दुनिया ने वैश्विक वित्तीय संकट के दुष्परिणामों से निपटने के लिए जिस तरह की असाधारण एकजुटता दिखाई थी और उसके जरिए बदहाल स्थिति को टालने में मदद मिली थी, उसी प्रकार के नेतृत्व और संकल्प की इस दौर में भी आवश्यकता है। अंशु शर्मा की एक रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के एक नए आकलन के अनुसार कोविड 19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक और श्रम संकट वैश्विक बेरोजगारों की संख्या में लगभग 2.5 करोड़ का इजाफा कर सकता है। दक्षिण एशिया में ILO के डिसेंट वर्क मामलों के निदेशक डागमार वॉल्टर ने इस बारे में बताया।
इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट अ हेल्थ क्राइसिस, इट्स वेरी मच एन इकोनॉमिक एंड लेबर मार्केट एंड एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। So the estimates that ILO brought out yesterday show a potential increase in unemployment with some 25 million additional unemployed, up from those 188 already estimated in 2019.
डागमार वॉल्टर कह रही थी कि ये केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं है, ये एक आर्थिक व रोजगार संकट है। इसलिए ILO का ये अनुमान बेरोजगारी में संभावित वृद्धि को दर्शाता है। 2019 में पहले से ही लगभग 1.88 करोड़ बेरोजगारों की संख्या के अलावा 2.5 करोड़ अतिरिक्त लोग बेरोजगार हो सकते हैं। बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही श्रमिकों की आय पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे वो कम उपभोग करेंगे और इससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा नीचे जाएगी।
दक्षिण एशिया में ILO की डिसेंट वर्क मामलों की निदेशक डागमार वॉल्टर के शब्द। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट की तरह अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीति प्रतिक्रिया होती है तो वैश्विक बेरोजगारी पर प्रभाव काफी कम हो सकता है। दक्षिण एशिया में ILO की डिसेंट वर्क मामलों की निदेशक डागमार वॉल्टर ने कहा कि कोविड 19 का सबसे बड़ा असर खास तौर पर कमजोर तबकों पर पड़ने की संभावना है।
The report also shows that some groups of the population may be more affected, like some women workers and categories of young workers.
डागमार वॉल्टर कह रही थी कि ये रिपोर्ट दिखाती है कि आबादी के कुछ वर्ग ज्यादा प्रभावित होंगे, जिनमें कुछ महिला श्रमिकों और युवा श्रमिकों की श्रेणियां शामिल हैं। इसी तरह प्रवासन करने वाले श्रमिक, प्रवासी श्रमिक और असंगठित क्षेत्र व अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोग, और इसका मतलब है कि हम आगे और अधिक असमानता देखने वाले हैं।
दक्षिण एशिया में ILO की डिसेंट वर्क मामलों की निदेशक डागमार वॉल्टर के शब्द। कोविड 19 की इस प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट में तुरंत व बड़े पैमाने पर समन्वित उपाय करने का आह्वान किया गया है। इन उपायों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, रोजगार बनाए रखना यानी कम समय का काम, सवैतनिक अवकाश, अन्य अनुदान और सूक्ष्म, लघु व मध्यम आकार के उद्यमों सहित वित्तीय और कर राहत शामिल हैं। इनके अलावा राजकोषीय और मौद्रिक नीति के उपायों और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के लिए ऋण और वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भी दिया गया है।
कोविड 19 से दुनिया के माथे पर तनाव की लकीरें गहरी हुई हैं, जिसका लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की अहमियत को समझते हुए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने 31 बिंदुओं में क्रमवार ढंग से आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधकों, बाल देखरेख सुविधा प्रदाताओं, वृद्धजनों और पहले से बीमार चल रहे लोगों और एकांतवास में रखे गए मरीजों के लिए सलाह उपलब्ध कराई है। यूएन एजेंसी ने रेखांकित किया है कि जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं, दोषारोपण या कलंकित करने के बजाय उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने कठिन समय में एक दूसरे की मदद करने के फायदे भी गिनाए हैं, जैसे कि जरूरतमंद पड़ोसियों या स्थानीय समुदाय के लोगों को फोन करके उनका हालचाल जानना। ये देखा गया है कि वृद्धजनों और पहले से बीमार चल रहे लोगों पर इस संक्रमण के ज्यादा गंभीर असर करने की आशंका प्रबल है और इसी वजह से महामारी फैलने के दौरान उनकी बेचैनी और भय को समझा जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस काम में उनके परिवार व दायरे के अन्य लोगों से सलाह मशवरा किया जाना चाहिए ताकि रोकथाम के उपाय अमल में लाए जा सकें। इस बीच संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने कहा है कि स्तनपान करा रही महिलाओं को बीमार पड़ने पर नवजात शिशुओं से अलग नहीं किया जाना चाहिए। यूएन एजेंसी के मुताबिक अभी इस बात के सबूत नहीं है कि मां के दूध से शिशुओं के संक्रमित होने का खतरा होता है, लेकिन अपने बच्चे के पास जाते समय संक्रमण का शिकार महिलाओं को मास्क पहनने, हाथ धोने और स्तनपान कराने के बाद आसपास रखे सामान को साफ करना चाहिए। आपको ध्यान दिला दें कि COVID-19 के बारे में बहुत सारे सवालों और अनेक भ्रांतियों व अफवाहों के सही जवाब व संदर्भ देने वाली मल्टीमीडिया सामग्री हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। वेबसाइट का पता है news.un.org/hi। इस महामारी से लड़ाई में तथ्यों पर ध्यान देने, अफवाहों से बचने और इंसान के रूप में एक दूसरे के साथ हमदर्दी दिखाने के साथ साथ एकजुटता दिखाने की बहुत जरूरत बताई गई है। एक डिस्पैच सचिन गौड़ से।
यूएन के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा कि मानव स्वास्थ्य के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का होना जरूरी है, लेकिन यह जोखिमों व उससे बचने के तरीकों को समझने और अपने परिवार व समुदायों की रक्षा के लिए सटीक जानकारी हासिल करने पर भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार कानून के तहत हर सरकार का यह दायित्व है कि कोरोना वायरस के खतरे के प्रति सत्यनिष्ठ और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाए और इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी ना हो। पत्रकारों की रक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी में बढ़ जाती है, खासतौर पर जब सरकार की कार्रवाई पर नजर और जनता तक सूचना पहुंचाई जा रही हो। कोरोना वायरस के फैलाव पर नजर रखने के लिए कई प्रकार की निगरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन ऐसे औजारों का इस्तेमाल सीमित स्तर पर ही किया जाना चाहिए और लोगों की निजता का ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे समय में जब COVID-19 के फैलाव के कारण लोग शहरों व देशों में तालाबंदी से अपने घरों तक सीमित रहने के लिए मजबूर हैं, यूएन की एक विशेषज्ञ ने बेघरों की व्यथा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए जिनके पास अपना घर नहीं है। विश्व भर में लगभग 1.80 करोड़ लोग आवासहीनता और अपर्याप्त आवास के हालात में रहते हैं। विशेष दूत लेलानी फरहा ने सरकारों से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ समुचित सुरक्षा मुहैया कराने के प्रयास होने चाहिए। इनमें वायरस से प्रभावित लोगों को किन्हीं कारणों से जबरन घर खाली करवाने पर रोक लगना और आवास कर्ज की अदायगी स्थगित करना शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एजेंसी IOM ने कहा है कि महामारी COVID-19 से उपजे संकट के दौर में भी ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि प्रवासियों व शरणार्थियों के साथ गरिमा व सम्मान के साथ बर्ताव हो। यूएन एजेंसी के प्रवक्ता जोएल मिलमैन ने यूएन न्यूज को बताया कि इस महामारी के कारण व्यापक स्तर पर तालाबंदी होने से प्रवासियों, विशेषकर खाद्य उद्योग में कार्यरत लोगों पर भी भारी असर पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एजेंसी का कहना है कि प्रवासियों और शरणार्थियों की दुनिया के कई देशों में मौजूदगी है और वे भी COVID-19 से उसी तरह प्रभावित हुए हैं जैसे अन्य लोगों पर इस सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी का असर हुआ है। यूएन एजेंसी की ओर से सबसे अहम संदेश यही है कि लोगों के साथ गरिमा और उनके मानवाधिकारों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ व्यवहार हो, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकता। बार, थिएटर, रेस्तरां, खेलकूद आयोजन बंद होने और लोगों के घरों पर रहने से प्रवासियों की आजीविका पर असर पड़ता है, और अगर किसी प्रवासी व्यक्ति के संक्रामक बीमारी का शिकार होने की आशंका है तो उनके पास भी डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल तक पहुंचने का विकल्प होना जरूरी है, क्योंकि इसी में समाज का हित है। और यही समय विकलांगों का ध्यान रखने का भी है। उन्हें नहीं लगना चाहिए कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। संक्रमितों के संपर्क या बीमारी की चपेट में आने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि उनके निवास के लिए समुचित ठोस प्रबंध किए जाएं। बहुत से विकलांग लोग ऐसी सेवाओं पर निर्भर होते हैं जिन्हें स्थगित कर दिया गया है, और हो सकता है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन और दवाइयों के लिए धन ना हो। इसलिए विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को नाजुक हालात या गरीबी के कगार पर धकेल दिए जाने से बचाने के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना बहुत अहम है।
दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में कोविड 19 के मामलों की पुष्टि होने से लोगों में भय, बेचैनी और अनिश्चितता का माहौल है, और इससे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने इस कठिन समय में बच्चों के मन में चल रही उथल पुथल को समझने का प्रयास किया है। साथ ही अभिभावकों को बच्चों के साथ खुले अंदाज व सौम्य ढंग से बातचीत कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। एक डिस्पैच के साथ अंशु शर्मा।
घर में बंद रहने की मजबूरी और सूचना माध्यमों पर कोविड 19 पर न्यूज रिपोर्टों की भरमार है। सूचनाओं व उनसे उपजती आशंकाओं की बाढ़ से बच्चे भी सशंकित और बेचैन महसूस करने लगे हैं, जो कि स्वाभाविक है। यूनिसेफ का कहना है कि ऑनलाइन माध्यमों व टेलीविजन पर बच्चे जो कुछ भी देख रहे हैं उससे उनमें बेचैनी, तनाव और दुख घर कर सकता है। यूएन एजेंसी का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और उनके मन में उठते सवालों का जवाब देने के लिए इस कठिन विषय पर बातचीत की जानी चाहिए। इस संबंध में एजेंसी ने कुछ खास उपाय सुझाए हैं। पहले बच्चों से पूछें कि वे इस विषय में कितना जानते हैं। अगर उनकी उम्र कम है और उन्हें इस महामारी के बारे में जानकारी नहीं है तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्हें साफ सफाई की अहमियत के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। ड्राइंग, कहानियों व अन्य गतिविधियों से बातचीत की शुरुआत करने का प्रयास होना चाहिए। उनकी चिंताओं को कम करके आंकने या खारिज करने से बचना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इन परिस्थितियों में व्यग्रता महसूस करना स्वाभाविक है। बच्चों की उम्र के अनुरूप भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए, उनकी प्रतिक्रियाओं को परखा जाना चाहिए और उनकी बेचैनियों के प्रति संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। अगर उनके किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो अनुमान पर आधारित जानकारी देने के बजाय यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अन्य किसी विश्वसनीय वेबसाइट की मदद ली जानी चाहिए। बच्चों को कोविड 19 संक्रमण से बचाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय उन्हें नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने की अहमियत को समझाना है। साथ ही उन्हें ये बताना जरूरी है कि छींक या खांसी को बाहर से ढकना चाहिए और बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस होने पर अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। टीवी या इंटरनेट पर लगातार खबरों के कारण बच्चे खुद पर खतरा मंडराता महसूस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें तनाव रहित रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना भी अहम है कि कोरोना वायरस पर बच्चे ना तो बुलिंग यानी डराए धमकाए जाने का शिकार हो रहे हैं और ना ही ऐसा करने में शामिल हैं। उनको बताया जाना चाहिए कि इस बीमारी का किसी के रंग रूप, मूल स्थान या भाषा से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई बुलिंग की घटना का अनुभव करता है तो उसे जल्द से जल्द किसी वयस्क को सूचित करना चाहिए। बच्चों को ये जानना आवश्यक है कि कठिन समय में लोग उदारता से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर कैटालिना डेवेंडस ने आगाह करते हुए कहा है कि बहुत से विकलांग व्यक्ति बहुत नाजुक परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन जीते हैं। फिर भी कोविड 19 विश्व महामारी से बचने के उपायों के तहत अभी विकलांग व्यक्तियों को समुचित व पर्याप्त दिशा निर्देश व सहायता उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। साथ ही बेघर लोगों के लिए भी अथाह मुश्किलें पैदा हो गई हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।